का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ के पिछले भाग में आपने सुना कि सोहराब अपना हुलिया और मेकअप बदलकर शोलागढ़ की तरफ टैक्सी से रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने एक खास तहखाने के अंदर जाकर पेंटिंग को छुपा दिया। श्रेया और सलीम गुफा से रास्ता खोजने की होड़ में नदी में कूद पड़े। विक्रम के घर एक अजनबी आदमी दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ा था। क्या हैं ये सब राज, जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ का ये भाग। उसे घूरता देखकर विक्रम खान की खोपड़ी उलट गई। उसने एक भरपूर पंच उसके मुंह पर मारा। पंच इतना नपातुला था कि वो आदमी किसी कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर धाराशायी हो गया। लपक कर विक्रम ने मेज की ड्रॉअर से रिवॉल्वर निकाल ली। उसने सुबह गोली वाली घटना के बाद ही उसे बेडरूम में लाकर रख लिया था। उसके बाद वो बहुत जोर से चिंघाड़ा, गार्ड, ये आदमी अंदर कैसे आया? उसकी आवाज सुनकर दोनों गार्ड भागते हुए अंदर आ गए। वो काफी डरे हुए थे। उनकी निगाह कभी जमीन पर पड़े आदमी पर जाती थी और कभी विक्रम के हाथ में थमी रिवॉल्वर की तरफ। मैंने पूछा, ये आदमी अंदर कैसे आया? विक्रम की आवाज अभी भी तेज थी। सर, इसने कहा था कि आपने उसे पेंटिंग देने के लिए बुलाया है सर, गार्ड ने बमुश्किल हकलाते हुए कहा। कदम, किसी को भी अंदर भेज दोगे? विक्रम इतनी तेज आवाज में चीखा कि दोनों गार्ड डर कर कांपने लगे। इसको बाहर उठाकर फेंक दो, विक्रम खान ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। और हां, खबरदार, कोई भी बिना मेरी इजाजत के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती करे तो गोली मार देना। तुम्हारे पास ये राइफल दिखाने के लिए नहीं है। दोनों गार्डों ने अपनी राइफल दीवार से टिका दी और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। तभी वो आदमी बड़ी फुर्ती से उठा और गेट की तरफ भागा। विक्रम भी उसके पीछे हो लिया। उसने भागते आदमी पर दो फायर भी झोंक दिए, लेकिन निशाना चूक गया। वो आदमी काफी फुर्तीला साबित हुआ था और तेजी से पेड़ों की आड़ लेता हुआ गायब हो गया। विक्रम काफी देर तक गेट पर खड़ा उस आदमी के भागने वाले रास्ते को देखता रहा। उसे उसकी कहीं झलक नहीं नजर आई। तब तक गार्ड भी उसके करीब आकर खड़े हो गए थे। कल से यहां दो गार्ड और चाहिए। तीन गार्ड गेट पर रहेंगे और एक लॉन में, विक्रम ने कहा। ओके सर, गार्ड ने धीमी आवाज में कहा। इसके बाद विक्रम ड्राइंग रूम में आ गया। उसके मोबाइल फोन की घंटी बज रही थी। उसने लपक कर फोन उठा लिया। फोन रिसीव करते ही उधर से आवाज आई, आपने अच्छा नहीं किया विक्रम खान, मेरा आदमी वादे के मुताबिक तुमसे पेंटिंग लेने गया था, तुमने उसे बैरंग लौटाकर मुझे गुस्सा दिला। मैं किसी कीमत पर पेंटिंग नहीं दूंगा, विक्रम ने उसकी बात को काटते हुए कहा। तुम्हें जो करना है कर लो, और हां, अगर दोबारा तुम्हारा आदमी यहां दिखा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ये कहने के बाद विक्रम ने फोन काट दिया। हाशना इंस्पेक्टर सोहराब का अपनी कार से पीछा कर रही थी। दरअसल वो सोहराब से कोठी पर मिलने दो बार आ चुकी थी। पहली बार वो सुबह के वक्त आई थी। उसे गेट पर गार्ड ने ही बता दिया था कि साहब कोठी पर नहीं है। अब वो रात में दूसरी बार पहुंची थी। उसने कार गेट के बाहरी पार्किंग में लगा दी थी। उसने आते ही गार्ड से सोहराब के बारे में पूछा। साहब अंदर है क्या? जी हाँ, आप अपना नाम पता और मिलने की वजह बता दीजिए। पर्सनल है, हाशना ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। वो गार्ड से बात कर ही रही थी कि उसे मजदूर के भेस में सोहराब जाता हुआ दिखा। वो उसका चेहरा नहीं देख सकी क्योंकि उस वक्त वो गार्ड से बातें कर रही थी। पीछे से उसे वो सोहराब ही लगा, लेकिन चाल में अंतर था। वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। इसके बावजूद उसने तुरंत ही पुकार लिया, सोहराब सर, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो उसे जाते हुए एक टक देखती रही। उसने गार्ड से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लैंडलाइन पर किसी से बातों में मशगूल था। उसके बाद वो टहलते हुए अंदर चली गई। वहां लॉन में ही उसे करीमा नजर आ गया। उसने हाशना को देखते ही पूछा, जी बताइए। सोहराब सर से मिलना है, हाशना ने कहा। वो तो है नहीं, करीमा ने कहा। कब तक लौटेंगे? वो बताकर नहीं जाते, हाशना वापस लौट पड़ी। उसने गार्ड पर एक उचटती सी नजर डाली, वो अब भी फोन पर लगा था। इसके बाद हाशना कार में बैठकर चल पड़ी। अचानक उसे सोहराब की कदकाठी वाले आदमी का ख्याल हो आया। उसे याद आया कि वो पैदल ही गया था। उसने तुरंत कार को उसी दिशा में बढ़ा दिया। हाशना ने आगे जाकर एक स्ट्रीट लाइट के पास कार रोक दी और उस आदमी का इंतजार करने लगी। उसने बड़े ध्यान से उस आदमी को देखा। वो सोहराब को पहचान नहीं पाई। सोहराब बीड़ी पीते हुए चाल में थोड़ी लंगड़ाहट लिए हुए उसके सामने से गुजर गया। वो वहीं खड़ी सोचती रही। उसके बाद कार स्टार्ट की और विजडम रोड की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद वो शयाली के बंगलों के सामने खड़ी थी। वो पहले भी कई बार यहां आ चुकी थी, लेकिन आज उसे अजीब लग रहा था। शयाली से उसकी अच्छी बनती थी। आज पहली बार वो बिना शयाली के उसके बंगलों के अंदर जाने वाली थी। इससे पहले वो एक बार सोहराब का पीछा करते हुए यहां तक पहुंची थी, लेकिन अंदर नहीं गई थी। गेट से कुछ दूर ही कार रोककर सोहराब का इंतजार करती रही थी। उसने गार्ड से अंदर मैसेज भिजवा दिया और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही विक्रम ने उसे बुला लिया। वो कार लेकर सीधे अंदर चली गई। जब वो ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां विक्रम एक अधूरी पेंटिंग के सामने बैठा उसे निहार रहा था। पेंटिंग स्टैंड पर टिकी हुई थी। ये किसी खूबसूरत लड़की की अधूरी पेंटिंग थी। लड़की ने सर पर ऊंची पोनीटेल बांध रखी थी। उसके घुंघराले बाल सामने की तरफ छूट रहे थे। कुछ बाल माथे पर भी थे। ये पेंटिंग शयाली की है, लेकिन अब ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी, विक्रम ने गमगीन लहजे में कहा। मुझे अफसोस है, हाशना ने कहा। शयाली रोज एक घंटा इस पेंटिंग के लिए मॉडलिंग करती थी। अब जब मॉडल ही नहीं रही तो पेंटिंग कैसे पूरी होगी, विक्रम ने एकटक पेंटिंग को देखते हुए कहा। वो कुछ देर ऐसे ही टकटकी बांधे पेंटिंग को देखता रहा। रात में कहां निकल पड़ी, विक्रम ने हाशना की तरफ मुड़ते हुए कहा। मैं परेशानी में पड़ गई हूं, हाशना ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। कैसी परेशानी, मुझे बताओ तो मैं पूरी मदद करूंगा। विक्रम सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो, हाशना ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। पूरी बात तो बताओ। मैं पेंटिंग के बारे में बात कर रही हूं, हाशना यह कहकर गौर से विक्रम की तरफ देखने लगी। विक्रम के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए थे। कुछ देर की खामोशी के बाद हाशना ने दोबारा कहा। बाबा ने पेंटिंग के लिए आसमान सर पर उठा रखा है। वो इस बार में खुफिया विभाग के सुपरिटेंडेंट से मिलने को कह रहे हैं, वो उनके दोस्त हैं। विक्रम उठकर टहलने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद हाशना ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। वो खानदान की बदनामी नहीं चाहते, इसलिए पुलिस में शिकायत नहीं करना चाहते। बाबा चाहते हैं कि पेंटिंग खुफिया तरीके से उनके पास पहुंच जाए। अगर उन्होंने सुपरिटेंडेंट से मदद मांगी तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी और शायद तुम भी। मैं कुछ हल निकालता हूं। तुम्हें अगर वो पेंटिंग इतनी ही पसंद आ गई है तो तुम उसे रख लो, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दो, मैं दादाजी के बक्से में रख दूंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है हाशना, विक्रम की आवाज में परेशानी साफ छलक रही थी। मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ सोचता हूं। मैं अब जा रही हूं, मैं तुमसे दो दिन बाद मिलने आती हूं। सार्जेंट सलीम पैर के बल ही कूदा था, क्योंकि अगर पानी गहरा ना हुआ तो सर में चोट लग सकती थी। सलीम ने गोता लगाया और फिर ऊपर आ गया। नदी के पानी का बहाव उसकी उम्मीद के मुताबिक थोड़ा तेज था। उसने नीचे से दोनों हाथ हिलाकर श्रेया को इशारा किया। इशारा पाते ही श्रेया ने भी पानी में छलांग लगा दी। उसके बाद जो हुआ वो सलीम के लिए काफी आश्चर्यजनक था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक टक श्रेया की तरफ ही देख रहा था। श्रेया ने पानी में छलांग लगाने के बाद तैरना शुरू कर दिया था। वो एक बेहतरीन तैराक साबित हुई थी। इशारा पाते ही वो जिस तरह तुरंत ही कूद पड़ी, उससे भी सलीम को ताज्जुब हुआ था। सार्जेंट सलीम तो अच्छा तैराक था ही। वो जल्द ही तैरते हुए श्रेया के करीब पहुंच गया। दोनों तैरते हुए दाहिनी तरफ जा रहे थे। बाईं तरफ दूर तक ऊंची चट्टानें नजर आ रही थीं। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। श्रेया निढाल होकर नदी किनारे रेत पर लेट गई। कुछ दूरी पर सार्जेंट सलीम भी लेट गया। दूर दूर तक शांति थी। चांद कुछ और नीचे उतर गया था। झिंगरों की हारमोनियम माहौल को संगीतमय बना रही थी। आसमान पर तारे किसी जरी वाले दुपट्टे की मानिंद लहरा रहे थे। पूरा माहौल रहस्यमय लग रहा था। सोना नहीं, हमें रात ही में इस इलाके से दूर निकल जाना होगा, सलीम ने श्रेया को कहा। सो नहीं रही, चलो चलते हैं, श्रेया ने उठते हुए कहा। कुछ देर आराम करना चाहती हो तो कर सकती हो, सलीम ने उसे रोकते हुए कहा। श्रेया ने सार्जेंट सलीम के करीब आकर बैठते हुए कहा, बस थोड़ा पैर में दर्द है, काफी खराब रास्ता था गुफा का। तुम तो बहुत अच्छी तैराक हो, तुम क्या समझे थे कि मैं निरी मूरख हूं? नहीं, मूरख तो मैं हूं, आप तो ज्ञानी चंद हैं, मैं अच्छी निशानेबाज भी हूं। चिड़ी मार हो?
हाँ, शूटर हूं।
वाकई? आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, सलीम ने कहा और वो कुछ सोचने लगा।
बहुत डरावना माहौल है यहाँ का।
सिर्फ नजरिए का फर्क है।
मतलब?
दिन में यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत होगा, जब हम दिन में इसे देखते हैं तो हमारा मन यहाँ बस जाने को होता है, तब हम सिर्फ उस लम्हे को जी रहे होते हैं, जबकि वक्त के कई रूप होते हैं, हर रूप जुदा होता है, सलीम ने समझाते हुए कहा।
मैं समझी नहीं।
चलो दूसरी तरह से समझाता हूँ। जब हम कैलेंडर पर कोई सीनरी देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ आने का मन करता है, लेकिन वो सिर्फ वक्त का एक लम्हा है। वही जगह रात में बहुत अजीब हो सकती है, तूफान में, बारिश में, और भी खतरनाक। बहादुर के साथ जीनियस भी हो, श्रेया ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा। तारीफ मत करो, बदहजमी हो जाती है, सार्जेंट सलीम ने उठते हुए कहा। चलो अब चलते हैं। श्रेया भी उसका हाथ पकड़कर तेजी से उठ खड़ी हुई। सार्जेंट सलीम कुछ देर खड़ा सोचता रहा कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। उसे नदी के किनारे किनारे चलने में कोई फायदा नहीं लगा, उसने सीधा चलने का इरादा किया। दोनों का सफर एक बार फिर शुरू हो गया। चांद अभी छुपा नहीं था, इसलिए उन्हें रास्ते समझने में दिक्कत नहीं हुई। कुछ देर बाद जंगल शुरू हो गए। जंगल में उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी, सलीम बहुत एहतियात से चल रहा था। धीरे धीरे जंगल घना होता जा रहा था, जहां पेड़ घने थे वहां चांदनी नीचे नहीं पहुंच रही थी। ऐसी हालत में अंधेरा गहरा हो जाता था। अचानक अंधेरे में उन्हें दो चमकती आंखें नजर आईं। श्रेया ने सार्जेंट सलीम को जोर से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर सोहराब की टैक्सी शोलागढ़ की तरफ भागी चली जा रही थी। ड्राइवर काफी होशियार था, वो एक बराबर रफ्तार से टैक्सी चला रहा था। इंस्पेक्टर सोहराब पिछली सीट पर खामोशी से बैठा हुआ था। सफर लंबा था और उबाऊ भी, लेकिन वो इंस्पेक्टर सोहराब था, उसे ऐसे उबाऊ सफर भी बुरे नहीं लगते थे। ऐसा खाली वक्त जब करने को कुछ ना हो तो उसका दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ने लगता था। इस वक्त भी वो केस की कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ एक फिल्म की तरह उसके जहन के पर्दे पर चल रहा था। श्याली के समंदर में डूबने से लेकर उसके बॉयफ्रेंड तक, मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग, फिल्म, सार्जेंट सलीम का गायब होना, पेंटिंग का मसला, ये सब मामले उसके दिमाग में एक एक करके आते चले गए। श्याली ने आत्महत्या की थी या ये महज एक हादसा था, या फिर उसके कत्ल की गहरी साजिश रची गई थी, सबसे बड़ा सवाल यही था। इंस्पेक्टर सोहराब ने अब तक जो तफ्तीश की थी और उससे जो नतीजे निकले थे, उससे सोहराब को यकीन हो गया था कि श्याली की मौत नेचुरल तो हरगिज नहीं थी। क्या श्याली के इस केस से पेंटिंग का भी कोई ताल्लुक है? ये बात इंस्पेक्टर सोहराब की समझ में अब तक नहीं आई थी, न ही वो इस न्यूड पेंटिंग को इस केस से जोड़ पा रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि उसने अभी तक सिर्फ पेंटिंग की चर्चा ही सुनी थी, उसने अभी तक पेंटिंग देखी भी नहीं थी। इस पूरे केस में कई किरदार थे, उनकी कड़ियां भी नहीं मिल रही थी। विक्रम के खान, हाशना, कैप्टन किशन, शैलेश जी अलंकार, और विक्रम ने पेंटिंग के संबंध में एक विदेशी का भी जिक्र किया था। सारे किरदार अलग थे। सोहराब को कुछ कड़ियों की तलाश थी, वो जुड़ते ही सब कुछ साफ हो जाना था। सार्जेंट सलीम के गायब हो जाने से इंस्पेक्टर सोहराब को काफी दिक्कत हो रही थी, अब उसे सारी तफ्तीश खुद करनी पड़ रही थी। सोहराब की एक परेशानी सलीम भी था, उसका भी अब तक कुछ अता पता नहीं था, और अब वो शोलागढ़ तक का सफर कर रहा था। दरअसल कैप्टन किशन और उसकी फिल्म के स्टोरी राइटर और डायरेक्टर शैलेश जी अलंकार सोहराब की कोठी पर केस के बारे में जानने आए थे। तभी शैलेश की जेब से सोफे पर एक कागज गिर गया था। उससे ही सोहराब को पता चला था कि शोलागढ़ में उनकी फिल्म शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर की शूटिंग होने वाली है। इसी के मद्देनजर वो वहां जाने के लिए निकल पड़ा था। सफर के लिए रात का वक्त इसलिए चुना था ताकि उसका पीछा ना किया जा सके। इंस्पेक्टर सोहराब जब शोलागढ़ के करीब पहुंचा तो उसने ड्राइवर से कहा,
शोलागढ़ से 2 माइलस्टोन पहले मुझे उतार देना।
ओके सर, ड्राइवर ने कहा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। टैक्सी में बैठे बैठे ही इंस्पेक्टर सोहराब ने पर्स से रुपए निकाल कर दोनों तरफ का किराया अदा किया। उसके बाद वो नीचे उतर गया। टैक्सी ड्राइवर वापस जाने के बजाय सीधे शोलागढ़ की तरफ चला गया। शायद वो किसी सवारी की तलाश में गया था ताकि एक तरफ का किराया और कमा सके। इंस्पेक्टर सोहराब पैदल ही शोलागढ़ की तरफ बढ़ चला। डरो नहीं, जंगली बिल्ली है, सार्जेंट सलीम ने श्रेया से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? जमीन से उसकी ऊंचाई से। बढ़ती रहो, अभी वो भाग जाएगी, सार्जेंट सलीम ने कहा। ऐसा ही हुआ। जंगली बिल्ली कुछ देर उन्हें देखती रही और उसके बाद भाग खड़ी हुई। सलीम और श्रेया झाड़ियों, पेड़ों से लटकती बेलों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। दोनों के लिए ये एक बुरा सफर साबित हुआ था, एक न खत्म होने वाला सफर। सब कुछ अचानक ही शुरू हुआ और अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सलीम का मन हो रहा था कि यहीं पढ़कर सो रहे। वो थक कर चूर हो गया था। मुश्किल ये थी कि वो फिर से जंगल में आ फंसा था। उसे एकदम अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है और किन खतरों में है। यह भी मुमकिन था कि वो घूम फिर कर फिर उन्हीं जंगलियों में जा फंसे। सलीम को यह भी अंदाजा था कि वो जंगली उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो श्रेया के लिए फिक्रमंद था। जंगली इस बार उसे नहीं छोड़ने वाले थे, श्रेया ने ऐसा ही तो बताया था उसे। वो कुछ जंगलियों के रहमो करम पर अब तक जिंदा थी, वरना उसे मार देने का हुक्म हुआ था। ये सब सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग की धारा बहक गई और वो सफर को आसान बनाने के लिए मस्खरेपन पर उतर आया। उसने श्रेया से पूछा, श्रेया एक बात तो बताओ जरा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी जंगली का तुम पर दिल आ गया हो और वो तुमसे शादी करने की सोचने लगा हो और इसीलिए तुम्हें वहां छुपा कर रखा गया हो? क्या बकवास है? बकवास नहीं है, जंगली पूरनमासी के दिन शादी करते हैं। वो तुम्हें बंद करके पूरे चांद की रात का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता? एक जंगली ने बताया था। मतलब कि मेरी शादी पूरनमासी को होने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गया, वरना शादी करके जंगल में ही बस जाता। जंगल में मंगल रहती बाकी जिंदगी। तो लौट जाओ ना, भाग क्यों आए? श्रेया की आवाज में तलखी थी।
तुम्हारी वजह से,
सलीम ने आवाज को गमजदा बनाते हुए कहा। अच्छा जी? हाँ जी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर तुम जंगलियों से शादी कर लेती तो। शट अप, श्रेया ने उसकी बात को काटते हुए गुस्से में कहा। ठीक है, शट अप हो जाता हूँ, सलीम ने बड़ी मासूमियत से ये बात कही। उसकी इस बात पर श्रेया को हंसी आ गई। उसके बाद दोनों ही ने खामोशी इख्तियार कर ली। दोनों चुपचाप यूं ही चलते रहे। श्रेया से रहा नहीं गया, उसने सलीम को टोकते हुए कहा,
कुछ बात करो ना, तुम चुपचाप अच्छे नहीं लगते।
खामोश रहो थोड़ी देर, साजन सलीम ने कहा और उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो रुक कर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। उसके बाद उसने रास्ता बदल दिया और दाहिनी तरफ चलने लगा। कुछ देर गुजर जाने के बाद श्रेया ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ, तुमने रास्ता क्यों बदल दिया? आगे जंगली हाथियों का झुंड है, वो खतरनाक हो सकते हैं।
तो क्या यहाँ शेर चीते भी होंगे?
श्रेया ने एक बार फिर सार्जेंट सलीम के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था।
हो सकता है,
अब तो ओखली में सर पड़ ही गया है तो मूसलों से क्या घबराना। दोनों तकरीबन 2 किलोमीटर दाहिनी तरफ मुड़कर चलते रहे। उसके बाद उन्होंने फिर से अपना पहले वाला सीधा रास्ता पकड़ लिया। श्रेया को अब ऊब होने लगी थी, वो बुरी तरह से थक भी गई थी।
हम कब तक यूं ही चलते रहेंगे भला,
श्रेया ने रुकते हुए पूछा। सहर होने तक, मतलब अरे प्रातःकाल की बेला तक तो साफ साफ बात क्यों नहीं करते? मॉर्निंग गुड होने तक हम चलते रहेंगे। इस जंगल में तो मॉर्निंग गुड होने से रही। तुम थक गई हो शायद बहुत ज्यादा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। चाहो तो कुछ देर आराम कर सकते हैं। नहीं, जंगल में खतरा है, यहाँ से निकलना ही बेहतर है। चलो चलते हैं। इसके बाद वो फिर सार्जेंट सलीम के साथ घिसटने लगी। यकीनन अब वो घिसट ही रही थी, उसकी चाल में तेजी नहीं थी, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और चलते चलते फूट भी गए थे, उनमें तेज दर्द हो रहा था। लेकिन उसने सलीम को इसका एहसास नहीं होने दिया। वो कब तक दर्द बर्दाश्त करती? एक जगह अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ?
मेरे पैरों के जख्म में तेज दर्द हो रहा है।
जख्म?
हाँ बुद्धू, पैरों के छाले फूट गए। ओह सो सॉरी, इट्स ओके सर्जेंट।
दर्द के बावजूद श्रेया ने मुस्कुराने की कोशिश की। श्रेया कुछ देर यूं ही जमीन पर बैठी रही। सर्जन सलीम खड़ा चारों तरफ देख रहा था, वो दिशाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने ऐसी कोशिश नदी किनारे भी की थी, लेकिन एक तरफ ऊंची चट्टाने और दूसरी तरफ जंगल होने की वजह से वो ध्रुव तारा नहीं देख सका था, वरना दिशाओं का अंदाजा लगाना आसानी से हो जाता।
चलिए चलते हैं।
क्या तुम चल सकोगी?
और कोई चारा नहीं है।
हम हैं तो क्या गम है, सार्जन सलीम ने बैठते हुए कहा। तुम मेरी पीठ पर घुड़ैया लद जाओ। मतलब? अरे जैसे बचपन में करती थी। मेरे गले में दोनों हाथों से घेरा बनाकर पकड़ लो और पैरों को कमर में फंसा लो, सार्जन सलीम ने समझाते हुए कहा।
नहीं, मुझसे नहीं होगा,
श्रेया ने हंसते हुए कहा। चलो जल्दी करो, वक्त खराब मत करो। बड़ी मुश्किल से श्रेया इसके लिए राजी हुई। सलीम ने उसे पीठ पर लाद लिया। वो तेजी से चल रहा था। कभी कभी जानवरों की आवाज जंगल की तंद्रा को चीरते हुए सुनाई पड़ जाती थी। इससे श्रेया की पकड़ सार्जेंट सलीम की गर्दन पर मजबूत हो जाती थी। अरे इतना मत दबाना कि मैं मर जाऊं। डरो नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सलीम ने हंसते हुए कहा।
तुम हो तो क्या गम है,
श्रेया ने सार्जेंट सलीम के अंदाज में कहा और हंसने लगी। तुमने कोई आवाज सुनी, सार्जेंट सलीम ने पूछा।
हाँ, कोई जानवर चिंघाड़ा था।
अरे नहीं, किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज।
मैंने तो नहीं सुनी।
अगर ऐसा है तो हम सड़क के नजदीक हैं, सलीम ने कहा। उसे उम्मीद थी कि अगर पास में सड़क है तो आवाज फिर जरूर सुनाई देगी। उसकी चाल अब थोड़ा तेज हो गई थी। सलीम को चलते हुए आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन उसे फिर ना तो किसी मोटर की आवाज सुनाई दी और ना ही कोई सड़क नजर आई। वो थोड़ा नाउम्मीद हो गया। वो अब भी श्रेया को पीठ पर लादे हुए चल रहा था। कुछ देर बाद ही वो एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से आगे रास्ता बंद था, यानी वो लोग खाई में खड़े थे और सामने एक ऊंचा टीला था। उसने श्रेया को नीचे उतार दिया। तभी उसके कानों में फिर वही वाहन के गुजरने की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए थे, यानी वो सड़क के नीचे खड़े थे। उसने श्रेया को फिर से पीठ पर लाद लिया और ऊपर चढ़ने का रास्ता तलाशने लगा। वो टीले के किनारे किनारे आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूर उसे एक ढलान नुमा रास्ता नजर आ गया। वो उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगा। सलीम थककर हलकान हो गया था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने की खुशी में उसकी थकान कुछ देर के लिए काफूर हो गई और आखिरकार वो सड़क पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने श्रेया को पीठ पर से उतार दिया। तभी एक ट्रक तेजी से गुजर गया। उसकी हेडलाइट की रोशनी में उसे एक माइलस्टोन नजर आ गया। उस पर लिखी इबारत देखकर उसे काफी राहत मिली। उस पर लिखा था, शोलागढ़ 7 किलोमीटर। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसने श्रेया से पूछा,
शोलागढ़ यहां से 7 किलोमीटर दूर है, अगर हिम्मत हो तो हम उधर ही चलते हैं। हो सकता है रास्ते में हमें कोई गाड़ी लिफ्ट भी दे दे।
चल पाना मुश्किल हो रहा है, तुम भी काफी थक गए हो,
यहीं बैठकर किसी गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं।
सलीम को श्रेया का आइडिया ठीक लगा और वो किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। रात के वक्त इधर से कम ही गाड़ियां गुजरती थीं। कुछ इंतजार के बाद उसे दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट नजर आई।
गाड़ी जब कुछ दूरी पर आ गई तो उसने उसे हाथ दिया, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। उसने 2-3 गाड़ियों को और हाथ दिए, लेकिन कोई भी नहीं रुकी। साजन सलीम को बात समझ में आ गई थी। वो इस वक्त जंगली के भेस में था और फिर रात का समय था, इस वजह से कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा था। सलीम ने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया और श्रेया को लेकर माइलस्टोन के करीब बढ़ने लगा ताकि उससे पीठ टिकाकर सो सके। तभी उसे एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई और वो पलटकर उसे देखने लगा। इससे पहले कि वो गाड़ी रोकने के लिए हाथ देता, वो खुद ही पास आकर रुक गई। वो एक कार थी। तभी कार की पिछली सीट से आवाज आई, जंगली लिबास में जम रहे हो बरखुरदार। आवाज सुनकर सार्जेंट सलीम चौंक पड़ा। सार्जेंट सलीम को कौन मिल गया था? क्या वो किसी नई मुसीबत में फंसने वाला था? इंस्पेक्टर सोहराब के शोलागढ़ जाने का मकसद क्या था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ @34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।